मनोहर में हुआ रस युक्त और अलौकिक माने हुआ ऐश्वर्य, दोनों प्रकार के लिए ऐश्वर्य और नाटकीय युक्त, और इस दोनों इलाओं में असामान्य अतिशय उनके कोई बराबर भी नहीं है और कोई उनके उनसे अधिक भी नहीं है। जीव तत्व में तो कोई है ही नहीं है और भगवान के तद्रूप वैभव में भी उनके समान कोई नहीं है। यहाँ तक कि परावस्थ नृसिंह और रामचंद्र इत्यादि भी उनके समान नहीं है, इनसे बड़े की तो बात ही क्या। विशेष करके स्वराज्य लक्ष्मी आप तो समस्त कामई, इसके लिए कुछ बतलाया था मैंने संक्षेप में। वहां पर स्वराज्य माने स्वयं रूपेण राजते, सब समय वो राज रहे, मैंने सब समय प्रसन्न चित्त है। कैसे प्रसन्न चित्त हैं? स्वराज्य लक्ष्य में आ, जैसे कोई एक आदमी शोभता है, कैसे धन हो, रुपया पैसा हो, स्वास्थ्य हो, लोकबल हो, संसारिक चीजें होती हैं, उससे वो सुशोभित होता है। कृष्ण की शेष सुशोभित, ये दोनों लीलाएं बतलाया पहले। ऐश्वर्य की अंतिम स्थिति का और माधुर्य की अंतिम स्थिति का, यही उनके स्वराज्य की। उसमें भी कह रहे हैं आप तो समस्त काम, वो कृष्ण आप तो काम और आत्माराम है। आत्माराम मैंने आत्मा में रमण करने वाले, आत्माराम मैंने आत्मा में रमण करने वाले। कृष्ण की आत्मा क्या है? राधिका जी। इसलिए आत्मा में जो रमण करने वाले, श्रीमती राधिका जी को आनंद देने वाले, ये आत्मा। इसलिए जब उनके साथ में क्रीड़ाओं में विलास में जब वो प्रमत्त हो जाते हैं तो वो आत्माराम जैसे संसार में बहिर्दृष्टि उसकी नहीं रहती, ऐसे कृष्ण की कोई भी बहिर्दृष्टि बाहर में रह नहीं जाती, इसलिए इनको आत्माराम कहा गया। और आप्त काम माने क्या? इन कृष्ण में कामना है, क्या कामना है? इनकी कामना है गो गोप गोपी गोवत्स ग्वाल बाल इत्यादि में इनकी रुचि। हमारे बछड़े ठीक हैं, हमारी गैया ठीक हैं, जिन बछड़ियों को और बछड़ों को चराते हैं वो जब बड़ी हो जाती हैं और जब उनको बच्चा हो जाता है, किंतु वो जो पहले काव्याक्ष है वो कृष्ण के अतिरिक्त किसी के साथ में दूसरे के साथ में चरने ले जाएंगे। इसलिए बाध्य होकर के इन लोगों के लिए ये गायों को, प्रौढ़ गायों को चराने लगते, नहीं तो वो बछड़े ही चराते। तो इस तरह से उनके प्रति कितना कृष्ण का स्नेह है, सखाओं के प्रति कितना स्नेह है, यह ब्रजभूमि के प्रति उनका कितना स्नेह है, सर्वाधिक अपने माता पिता के प्रति कैसा स्नेह है, और उनसे भी अधिक गोपियों के प्रति उनका कैसा स्नेह है। उसके लिए सब समय ये उनकी कामना होती है, ये इनको कैसे प्रसन्न है, इनको कैसे रखें, यही उनकी कामना है। इसलिए उस कामना के लिए ही उनको इसके अतिरिक्त और कहीं उनकी कामना, इसलिए वो आप्त कामना। आप्त माने अपना है? अपना कौन है? गोप, गोपी, गोप, गोभूमि, गोकुल। इसलिए उन्हीं के लिए केवल कामना है, इसके अतिरिक्त और कहीं भी कोई कामना नहीं है। ऐसे समस्त काम इसमें जिनकी है, जिनके चरणों में लोकपाल लोग सब दे रहे हैं बलि, उपहार दे रहे हैं, और ये उग्रसेन को अपना प्रभु मान करके हाथ जोड़ करके कहते हैं, ये प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। उद्धव जी कहते हैं, ऐसा देख करके हमारा मन विचलित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, जैसे ये कौन है, ये सचमुच में ऐसा अभिनय कर रहे हैं ना सचमुच में ऐसा कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता। कुंती जी को भी ऐसे कभी कभी हो गया। गोपियों में ये शंका आएगी कि नहीं, और गोपों में ब्रजभूमि कराने वाले लोग क्यों ये नहीं देखते जैसे कोई उनको ये सब कर रहा है, दे रहा है उपहार इत्यादि, कोई भी नहीं देखते, बल्कि यहाँ पर ब्रज में कृष्ण स्वयं दूसरे को उपहार देते हैं। इसलिए ये इसको वर्णन करते हुए फिर आगे कहते हैं, ओ कृष्ण इतने होने पर भी रधीश हैं और असमर्थ हैं, किंतु इनकी कृपा इतनी सरल, सहज और अहैपी है जिसकी चिंता होने पर, कितना होने पर बड़ी अभी साधक भाव भक्त, भावुक भक्त जिसको भाव हुआ वो केवल इसी की चिंता करता है, ये ऐसे करुणाशील है भगवान ये कृष्ण चंद्र, कस्यानुभावो अश्चन देव महे तवान में रेणु स्पर्शाधिकार दुर्वांशासी लल्लाचर तपो विहाय कामांशु चीरम दुखपता। ये भजन रहस्य में है, कलियंत में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा, व्यास जी को योग समाधि में श्रीमद् भागवत मिला, वैसे बलदेव विद्याभूषण जी को जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी को चैतन्य चैतन्य के लिए मिला, जैसे ये कौन लिखा रहा है,
लिखा है
मदन मोहन जी लिखा रहे हैं, ऐसे ये कहें कि हमको राधा गोविंद जी ही ये लिखा रहे हैं, ये कहीं का लिखा है, ये राधा गोविंद जी की कृपा से और उनके निर्देश में इसका संग्रह किया है, नहीं तो इतना संग्रह भागवत का होना बड़ा कठिन, बहुत कठिन, भागवत से ही नहीं और भी ग्रंथों से इसने किया। तो यहाँ पर भगवान की कैसी अहम की कृपा होती है उसके लिए वर्णन कर रहे हैं। कालिय दमन उपाख्यान से इस श्लोक को लिया गया, इसको कह रहे हैं नागपत्नी, भगवान की कैसी अहस्ती होता है जिसको ब्रह्मा इत्यादि नहीं पा सकते, जबकि कृष्ण काली देह में कूद पड़े तो उनको मारने के लिए चेष्टा करना करने लगते हैं, और समस्त जल को उसने विष बना दिया, उसकी लहरें उठने लगी आपकी लपटों जैसी, और ऊपर में चलने वाली चिड़िया भी उसके लपटों से गिर करके मर जाती है। और उसने कृष्ण को पड़े और कृष्ण के अत्यंत सुकोमल और मर्म स्थलों को वो काटने लगा, गले में तीन पर इधर कक्षल में काटने लगा। जब वो हार गया अंत में अपने खेते में उनको बांध दिया, अंत में खेत में बांधने पर भी कृष्ण ने अपने शरीर को सुकड़ा करके और फिर उसको बढ़ा दिया, बस उसके अंग तंग प्रत्यंग साथ
टूटने लगे
तो बात होकर के वो छोड़ दिया, हिला कर दिया, तब खुद करके उसके सिर पर चढ़ गया और नृत्य करने लगे और बंसी बजाते हुए और प्रसन्न चित्त से। गोपियों ने देखा, जब पहले देखा और कृष्ण के प्रति शत्रुता करते हुए देखा, कल जैसे ये कार्य मर जाता तो अच्छा था, ये भगवान के लिए भी शत्रुता कर रहा था। और फिर जब देखा इसके ऊपर में जब नाच रहे हैं और एक एक फण को तोड़ रहे हैं और उससे रक्त उगलने लग गया, तो सोचा जैसे गरुड़ से भी मैं युद्ध में परास्त होकर के ऐसी मेरी दशा नहीं हुई, वहां से तो किसी प्रकाश में भाग करके चला, यहाँ से तो भागने का कोई उपाय नहीं, लाखों मन जैसे पहाड़ों से भी भारी कृष्ण के ये सब अनुभव, और उसी से कुचल करके एकदम निशम जैसा बन गया, सांस खुलने लग गया और धीरे 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 वो एकदम निर्बल असहाय हो। उस समय में सोचा जैसा कहीं हमारी पत्नियां जिसके लिए जाती थी कोई भगवान को नहीं, तो भगवान को पुकार, अब उनको दया आई, तब वो कहने लगी कि हम कहीं विद्वान न हो, आप इस काली पर कृपा करें और कृपा की अनुभूति करके वो कह रहे हैं कस्यानुभावो अश्वन देव विद्वान, कस्यानुभावो ओ पूर्व जन्म में इसने क्या किया था, अनुभावो, अनुभाव किसको कहते हैं, रसशास्त्र में अनुभाव कहते हैं जब किसी का कृष्ण विभावित चित्त से उसका शुद्ध सत्व ग्रहित हो जाता है और उसके बाद में वो जो दिखाई पड़ते हैं ऊपर से अश्रु कंप रोमांच इत्यादि, तो ये सब हर्ष शोक धिक्का इत्यादि ये सब व्यभिचारी उसको अनुभाव भी करते हैं, ये भावों को अनुगमन करते हैं चित्त के भाव, अर्थात उसका ये फल है। जब चित्त विकृत होगा तो उसका फल के रूप में आंखों में आंसू आना और द्रवित होना और ये है। तो कस्यानुभावो, इसने पूर्व जन्म में क्या किया जो ऐसे अनुभव हो रहे हैं, ये फल हो रहा है, क्या अनुभव देखा, अनुभव देखा और जिन चरणों को आज तक ब्रह्मा इत्यादि सब देवता लोग हैं, बड़े बड़े भक्त लोग हैं, अरे यहाँ तक कि लक्ष्मी की भी उदय, लक्ष्मी भी जिन चरणों का स्पर्श नहीं कर पा रही, आज वो जबरदस्ती इसके सिर पर चढ़कर और अपनी चरण धूलि को दे रहे हैं। पहला तो ये किस कारण से ऐसा हुआ, कृष्ण की चरणों की धूलि को पाना जिसको ये लोग विधि महत्व इत्यादि नहीं पाते हैं, लक्ष्मी की नहीं पाती है, वो कैसे पाया जाती है, साधन से, ऐसा तो साधन इसमें देखा नहीं जाता, तो ये कैसे हुआ ये सोच करके भी वो पूर्ण किनारा नहीं पा रही है। इसलिए मालूम होता है यह है क्योंकि त्रिपाही से ऐसा संभव और कोई नहीं हो सकता, इसलिए यह अहति करुणा का एक दृष्टांत उदाहरण है। न देव विद्महे तवांग हृदयनो स्पर्शाधिकार, इसको आपके चरण की धूलि को स्पर्श करने का अधिकार दे दिया, ये नहीं चाहता है, ये नहीं चाहता था कि आपके चरण यहां पर आए, उसके पहले आपको मारना चाहता और किसी प्रकार से चढ़ने नहीं देगा। कृष्ण ने जोर पूर्वक चढ़ करके और चरण धूलि दी। दूसरी बात, चरण धूलि नहीं बल्कि नृत्य करते हुए भावभंगी के साथ में उस पर नाच रहे हैं। और तीसरी बात, बड़े प्रसन्न होकर के बांसुरी बजाते हुए, प्रसन्न होकर के मुस्कुराते हुए और उस पर नृत्य कर रहे हैं और अपनी चरण धूलि को भी दे रहे हैं। ऐसा सौभाग्य इसको कैसे मिला? जदवांचा श्री लल्ला कर तपो विहाय काम अनुसूची जदवांचा, इस धूलि की आकांक्षा लेकर श्री ललन, श्री सौंदर्य की देवी जो लक्ष्मी है, उन्होंने सुचिरम धृतवता व्रत को धारण करके बहुत दिनों तक आराधना की उन चरणों को पाने के लिए, किंतु अभी तक ज्ञात नहीं हो सका कि मिला कि नहीं मिला उनके चरणों को। अतः यदि हम जानते कि जिस तपस्या के बल से, आराधना के बल से उन्होंने कृष्ण के चरणों को पाया, तो हम भी करते, किंतु ये किसी और दूसरे चीज का फल नहीं है, ये तो भगवान ने है कि करना करके और इस चीज को दिया, इसलिए भगवान की यह है कि जगाई नगाई के ऊपर में जो करुणा की नित्यानंद प्रभु जी ने, हरिदास ठाकुर जी ने, यहाँ महाप्रभु जी ने, उसने कोई आराधना की कोई अर्थना, जैसे हम सुनते हैं वाल्मीकि जी के लिए, अगस्त ऋषि के लिए और सब लोगों के लिए, नारद जी के लिए, इन लोगों ने तपस्या आराधना की तब भगवान की कृपा कुछ मिली, किंतु इसका तो कुछ देखते नहीं है। इस विशेष करके भगवान की जो भक्ति है, प्रेम है, वो भगवान की कृपा या उनके परिकरों की कृपा से ही मिलती है। साधन तो केवल इसलिए हम शरणागत हो सके, बस इसके लिए, इसलिए ये सब उनकी कृपा पर निर्भर है। हम शुद्ध रूप में भजन करते हैं और हमारा मन एकाग्र हो, इसमें भी हम साधन भजन करके कुछ नहीं कर पाते, इसमें भी भगवान की कृपा है। इसलिए साधन भजन को भी समझो, ये भी भगवत कृपा है। तो इसका मतलब नहीं ये भगवान की कृपा है इसलिए हम लोग कुछ करें ही नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए हम लोग को साधन भजन भी करना चाहिए, साथ साथ भगवान की कृपा के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। की पुण्य कार्य उपाय पदरे तब बुझते न पारी कृष्ण कृपा संभव, कैसे कृष्ण की कृपा होती है ये समझ में नहीं आया। जहाँ लगी लक्ष्मी देवी तपा चलेगा, जिनके लक्ष्मी देवी ने बहुत दिनों तक व्रत धारण करके तपस्या का आचरण किया, बहुकाल भीत व्रता काम आदि छाड़ी, काम को भी छोड़ दिया, सब कुछ किया, किंतु पाया कि नहीं है ये अभी तक कोई पता नहीं। भाव भक्त फिर चिंता करता है, श्रीमद भागवत की कथा, यदि प्रेम पाना है तो भागवत को जरूर ग्रहण करना पड़ेगा। ब्रजगोपियों की सर्वोत्तम भक्ति है, इसी के लिए किसी के हृदय में यदि लोभ हो और उसका अनुशीलन करेगा तब ऐसी भक्ति आएगी। उसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर करते हैं, नायन स्त्रियो अंग नितान्त रते प्रसाद लक्ष्मी जी को नितांत रते प्रसाद, कृष्ण में प्रेम रूपी जो संपत्ति है लक्ष्मी भी ने लाभ कर सकते। स्वर्जोषितां यहाँ पर लक्ष्मी जी से तात्पर्य ये रुक्मिणी सप्तभामा इत्यादि से भी है। रुक्मिणी और सप्तभामा को और बैकुंठ में लक्ष्मी जी को भी जो अत्यंत उत्कृष्ट प्रकार की जो रति है, प्रसाद है, वो उनको नहीं मिला। क्या? लक्ष्मी जी सब समय भगवान के चरण कमलों को अपने श्री अंक में धारण करके सेवा करती है। रुक्मिणी सप्तभामा भी कृष्ण की सेवा करती हैं। होने पर भी उनको ये सुयोग नहीं मिला, कैसा? जैसे गोपियों को मिला। स्वर्जोषितां नलिन गंधरुचां, स्वर्जोषितां, स्वर्ग की साधारण स्त्रियों की तो बात ही क्या, जो भगवान के भगवत स्वरूप की जो देवलोक में अभिभूत होते हैं उन पर कृपा करने के लिए बामन देव हय ग्रीव अथवा और सब जो भगवान के रूप में जो वहां पर भगत होते हैं उनकी जो लक्ष्मियां हैं उनको भी ये सौभाग्य प्राप्त। नलिन गंध रुचो रुचा, नलिन गंध माने कमल की गंध, जैसे उनके स्त्री अंगों से जो गंध निकलता है ऐसे स्वर्ग की स्त्रियों की तो बात ही क्या। जब भगवान की लक्ष्मियों को भी और नारायण की लक्ष्मी को भी द्वारकाधीश के भी लक्ष्मियां जो हैं 16 सहस्त्र उनको भी यह सब जो सुयोग नहीं मिला है, तो साधारण स्वर्ग की नलिन गंध अर्थात कमल गंध की जैसे गंध वाली स्त्रियां जो हैं तो उनकी तो बात ही वो कहाँ से कुतु अन्ना। और संसार की दूसरी जो स्त्रियां हैं अन्य किसी को भी कोई बात ही क्या है, ये सब सुयोग नहीं मिला। रासो रासो सवे अष्टभुज दंड गृहीत, हो सकता है कि कृष्ण यशोदा मैया को दूध पिलाने के लिए या किसी बात के लिए हट करने के लिए और यशोदा जी के गले में हाथ डाले, कोई चीज मांगते हैं तो गले में हाथ डालने का मतलब क्या, हम उससे कुछ अनुरोध करते हैं। तो कृष्ण यहां कारण है, द्वारका में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। वहां पर एक डांट लगा देंगे तो जितनी भी स्त्रियां हैं सब कंपायमान हो जाएंगी। फरक कभी सप्तभामा जी को कुछ मान हुआ कैसे, गोपियों की महत्ता जहां हो रही है और कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं, सप्तभामा जी कुछ बिगड़ गई और सभा स्थल से निकल करके दूसरी जगह चली गई। कृष्ण देखा जी ये तो गोपियों का अनादर हुआ, गोपियों का अनादर कर रही है, ग्रामीण समझ करके गोपी समझ कर। तो जब वो चली गई घर में तो उन्होंने किसी को भेजा, सत्रादित्य की कन्या को जाकर के कह दो बुलाने की जरूरत नहीं, उसे बुलाना मत पड़ता, कह देना यदि तू उनकी उपेक्षा की और उनकी इच्छा हुई गोपियों की तो मैं आज ही तुमको घर से बाहर कर दूंगा, कल की बात नहीं आज ही बाहर कर दूंगा और कभी भी अपने पास नहीं आने दूंगा, जाकर तो उसे कह दो ये कृष्ण बिगड़े में और अभी तुमको घर से बाहर कर। तो उसकी जो परिचारिका थी दौड़ करके गई, बोली से जल्दी से आप अच्छे कपड़े पहन करके भूषित होकर के प्रसन्न चित्त होकर के अभी जाओ जल्दी से और क्षमा मांग लो, नहीं तो घर से तुमको बाहर कर। बस डर के मारे को भवन से उठ करके आए, अच्छे अच्छे कपड़े पहने और पहन करके यहाँ पर वो कृष्ण कथा कर रहे थे जा करके खंभे के आड़ में खड़ी हो गए, लज्जा के मारे आए। तो कृष्ण ने गोपियों के मायना सुनाते हुए कहा मैं किसी पर द्वारका में रानियों के प्रति मैं आसक्त नहीं, ये लोग न समझें, मैं तो गोपियों की प्रसन्नता के लिए कुछ उनका स्मरण करने के लिए उस सादृश्य के लिए जिसे मैंने शादी किया, उनके सादृश्य की भावना की जीतना के लिए मैं, और यदि मैं देख लूंगा कि नहीं होता तो इस एक क्षण भी हम होने लगेंगे ये सब कुछ, तो उसमें सब जितनी चिराइयां थी वो
थोड़ा डांटने पर ही कृष्ण उन लोगों के लिए को भवन क्यों बना दिया, अपने लोग थोड़ा डांटने पर हो जाता है तो रानियों के लिए को भवन क्यों बना करके दिया
कृष्ण,
जब इन लोगों का डांटने पर हो जाता है को भवन बना
बनाना नहीं पड़ता है, अपने आप बना लेते
हैं उन लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिला, इसलिए बंसी साथ में नहीं ली ब्रज से मथुरा द्वारका में बंसी नहीं गए, किस लिए ये एक चुटकी बजाते हैं इन लोगों का ये सब, इसलिए बंसी फंसी की कोई है, बंसी तो वहां पर जाती होती है जहां पर कृष्ण समर्थ हो जाते हैं वहां पर वो बंसी का अर्थ करती है। रासोत्सव अश्य भुज दंड गृही पर वहां पर गोपियों ने उनके यहां गर्दन में हाथ ऐसे नहीं दिया, किसने दिया, कृष्ण ने स्वयं मुझे दंड गृहीत कंठ, रास के उत्सव के समय में कृष्ण ने उनके गले में हाथ डाला, किस लिए, मैं भूल से अंतर ध्यान हो गया, अब तुम कहीं चला मत जाना, और हमारे अंतर ध्यान होने के पीछे ये श्रीमती राजकाजी है, वो उस राष्ट्र से चली गई कुछ मान कर रहे, इसलिए मैं यहाँ से चला गया, लोगों ने समझा जैसे मैं ही अंतर ध्यान हो गया और सभी उसके लिए विलाप कर रहे हैं, राधा जी भी उसमें ऐसी बात नहीं, राधा जी राष्ट्र से पहले चली गई, कृष्ण उनको मनाने के लिए राष्ट्र छोड़ दिया, इन लोगों ने देखा जैसे कृष्ण नहीं है, उसका अनुसंधान नहीं हुआ, और कुछ गोपियों ने देखा स्वपक्ष वाली कि राधा और कृष्ण दोनों ही रास्ते पीछे से उनके पैरों पर छाप देखने से ये सब भुज दंड कृष्ण ने अपने हाथों की, तुम्हें तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते, तुम लोगों के प्रेम के लिए लब्धा शीशन कृष्ण के आशीष को पाया, ये कौन कह रहा है, उद्धव जी कह रहे हैं, यदि ब्रज का हृदय होता तो ये नहीं कहते, कृष्ण को आशीर्वाद गोपियां देती ऐसा वो कहते, इसलिए उनका समूचा हृदय गोपियों का महत्व तो मालूम हुआ, किंतु इतना नहीं कि अपने शरीर को हृदय को रंग संके उसके, इसलिए बाध्य होकर के उन्होंने कहा और ये कृष्ण की बड़ी भारी कृपा हुई कि उनके गले में हाथ डाल, बल्कि ये नहीं कहा कि गोपियों को का चित्त द्रवित हो गया, कृष्ण पर स्नेह से वशीभूत हो गया और कृष्ण पर भी एक तरह से कृपा करके गले में हाथ, कृष्ण ने उनके गले में हाथ डाला, ये कहीं तुम बिछुड़ नहीं जाना, इसलिए लब्धा शीशान जो उद्गार ब्रज संगरीना, और किसी के लिए ये संभव नहीं आज तक, इसलिए पीछे से उन्होंने बतलाया न पा रहे हम, मैं तुम लोगों का चिरऋणी हूं, देवताओं जैसी लंबी आयु पा करके भी मैं कभी भी तुम्हारे प्रेम से और लोगों के लिए ये जथा माम प्रपद्यंते काम करते और सबके लिए उसके प्रेम को वो दे सकते हैं, जैसा वो प्रेम करते हैं वैसा भी कर लेंगे, किंतु इन लोगों के लिए ऐसा नहीं, उसके बराबर प्रेम ही नहीं दे सकते, कृष्ण रस राज हैं, रस के राजा हैं, ये बात ठीक है, किंतु राधा भी जैसा महाभाव का अधिरूढ़ी इत्यादि भाव है कि नहीं, है कि नहीं, जब होता तो महाप्रभु के रूप में आ करके उसको शिक्षा करके वैसा नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, ये नहीं, ये कहने से कृष्ण की कमी हो जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं कहा जाए, किंतु जैसे राम में सब कुछ होने पर भी कृष्ण जैसा रसिक नहीं हो सकता, कभी नहीं होंगे, वो राम का रामत्व तो वही करते, है कृष्ण का सभी कुछ मैं कहूं तो कृष्ण ही तो है, किंतु उस लीला में ये प्रकट होने का नहीं। इसलिए कृष्ण में जब राधिका जी का जैसा महाभाव उन्नत मादन मोदन इत्यादि है वो राधिका जी में, इसलिए महाभाव स्वरूपीय है और वो रस वो रसिक है।
कृष्ण करुणामृत की व्याख्या में तो लिखा है कि राधा जी का मादनाख्य महाभाव तो कृष्ण के अंदर में मोदनाख्य महाभाव,
तो मोदन वाला कम है ना,
ब्रह्मा जी को नव वृंदावन की रचना करनी पड़ी और उस भाव से उनको बाह्य दशा में लाना पड़ा।
ठीक है, किंतु प्रेम की का आश्रय राधिका जी में, कृष्ण में होने पर भी
रसराज विग्रह कृष्ण है
ठीक है और उन्हें सभी कुछ मानना पड़ेगा ये है अभाव में, तब राधिका जी उन्हीं में है इसलिए उनमें अभाव है। इस तरह
भाव के उद्देश्य
ये क्या होगा, ये कारण है लब्धा श्रीशान और जहां पर कृष्ण कर रहे हैं न पारे हम निर्बद्ध संजू जाए, मैं तुम्हारा ऋणी हूं और ये कार्य कृष्ण उनको आशीष दे रहे हैं, इसमें सामंजस्य कैसे हो। तथा कृष्ण का आशीष उन पर है
ना, यहाँ पर आशीषाम ब्रजसुंदरी ना तो बहुवचन में आया गोपियों के लिए है कि गोपियां आशीष दे रही
हैं। सभी देखो है भक्ति नो ठाकुर कहते हैं लक्ष्मी ना पाई लो से कृपा अनुभव जिसको गोपियों ने कृपा को पाया, इसे साधारण नहीं है अर्थात विशेष अर्थ में कोई निर्देश क्योंकि उद्धव कह रहे हैं ना उनके लिए वैसा कहना संभव पर नहीं है। इसलिए लब्धाशीषा ये बहुत सी गोपियां कृष्ण के आशीष को भी होने पाए, उद्धव भी ऐसा ही समझेंगे सब समय भगवत्ता उनके अंदर में है इसलिए कभी ऐसा नहीं है कि इस प्रकार से कह सकते। इस प्रकार से सब भक्तों में सभी प्रकार के भक्त लोग जो कि सबसे उन्नत भाव वाले हैं ऐसी गोपियों के भावों का अनुसरण करना चाहते, उनकी यही सार्थकता है भजन की, सबसे सर्वोत्तम सार्थकता है जो गोपियों भावों के की आकांक्षा करें। इसलिए फिर उसको बतला रहे हैं आशा महो चरण रेणी दुषा मनुष्य वृंदावने किम गुलमलतौषधीना जादुस्तजन स्वजन आर्त पतन चहित्वा वेजे मुकुंद पदवें सुतभि मृमेक्यं। उद्धव जी कह रहे हैं उद्धव जी सब समय जितना भी ब्रजरस का वर्णन करेंगे कृष्ण को ही रखेंगे उपास्य के लिए, उन्हीं को श्रेष्ठ बतलाए। यहां पर भी वही भेजे मुकुंद पदवी सुत भी मृविज्ञान, ये श्रुतियां भी श्रुतियों के लिए भी अगोचर मृविज्ञान मैंने जैसे कि हिरणी के लिए जो कि पास जिसको प्यास लगी है उसके लिए पानी मृविज्ञान सब समय ढूंढ ही रही है सोच रही है यहां पर पानी मिल जाएगा जैसे वो
मरीगा मरीचिका
वो हवा की लहर गर्मी के से और वो समुद्र जैसे तरंगाई थे ऐसे यहाँ पर पानी मिलेगा और करते 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 में गिर कहाँ चली जाती हैं बालू और अंत में गिर जाती हैं छटपट करके तो बस मर जाती हैं, कोई उठाने वाला भी नहीं रहता। ऐसे ही ये श्रुतियाँ ढूंढते 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 आज तक भी ढूंढती रह गई। भेजे मुकुंद पदवी मुकुंद की पदवी को मुकुंद के चरण कमलों किंतु नहीं पा सकी, और ऐसे मुकुंद जी को गोपियां कैसे रखती हैं अपनी मुट्ठी में बसी भूत करके रखती हैं ऐसी ये गोपियां आसाम हो चरण रे। कृष्ण के चरण के लिए नहीं गोपियों की चरण धूलि से अभिषिक्त होने के लिए वृंदावन में कहीं भी गुलमलता या औषधि हो जाए और उस पर गोपियों की चरण धूलि उड़ करके पड़ जाती है, या अभिशाप के समय में चलते समय इधर उधर चल रही हैं उनके पैर ही ऊपर पड़ गए और उसकी धूलि लग गई, किसी प्रकार से वो धूलि मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक।
इस श्लोक में गोपियों की क्या विशेषता दिखाई है जिसमें कि केवल कहा गया जा दुस्तज सजन आर्य पतन से, इस पर विशेष जोर दिया, तो ऐसे सजन आर्य पर तो सभी लोग तय कर सकते हैं,
कहाँ कर सकते, आज तक किसी ने किया, किसी ने भी किया, यदि किया भी तो देहा शक्ति का तो लेकर के किसी साधक में ऐसा नहीं, आज तक कोई उदाहरण है
ऐसे बहुत से साधक साधिका वृंदावन को आते हैं,
कोई भी दिखलाओ
अपना घर बार सब
कुछ छोड़कर आते हैं, झगड़ा और इसमें मुश्किल, लोगों को कुछ ना कुछ अपेक्षा रहती है, हम ऐसा कोई काम ना करें जैसे कि समाज हमारे ऊपर में उंगली उठा सके और उनका घर सब कुछ समाज का समाज सास ससुर गुरुजन सब लोगों ने उनके बातों पर भ्रूक्षेप नहीं किया और छोड़ करके देखते देखते रोटी बना रही ना चल दे चलिए श्रृंगार कर रही है पतियों की सेवा कर रही उस समय में चलिए, ऐसा उदाहरण कहीं विश्व में मिले, इसलिए कहते हैं गुलमर्ष औषधि भी होकर के चली जाए। यहाँ पर ब्रह्मा की प्रार्थना से कुछ ये भिन्न है, ब्रह्मा जी आधिकारिक देवता हैं, उद्धव जी आधिकारिक देवता नहीं, कृष्ण के सखा मंत्री बंधु बांधव ये, किंतु ये भी ब्रज के नहीं हैं। अच्छा, ब्रज का कोई भी व्यक्ति ऐसी प्रार्थना करेगा नहीं करेगा, क्यों, उनको तो ऐसा मिला है, उनको प्रार्थना करने की ये क्या जरूरत, ये सब प्रार्थना नहीं करेगा, उनकी दृष्टि में स्तुतियां इत्यादि जो इन प्रभु को ये ऐसा कर रहे हैं ये भी नहीं देखेगा, जो मुट्ठी में ही है बसीभूत है उसके लिए ये सब प्रार्थना क्या, इसलिए गोपियां कभी भी ये प्रार्थना नहीं कर, इसलिए उद्धव ये प्रार्थना कर रहे हैं वृंदावन में कहीं भी किमपि गुल मलौषधि नाम कहीं गुलमलता औषधि हो जाऊं वृंदावन में, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्या वो पूरी भागमी है जन्म किमपि वृंदावन में हो तो ठीक है नहीं हो तो कहीं भी गोकुल में भी हो जाए, गोकुल मैंने कहा
वृंदावन में कहीं
कहीं भी जहाँ पर गाय चराते हैं चाहे कामेबन में हो जाए
प्रांत के एक से
कहीं कहीं भी हो जाए, बद्री नारायण है ना केदार में वृंदावन वहां पर भी हो जाए कहीं भी हमको हो जाना चाहिए, और कभी नहीं हम वो नहीं चाहते, वो कहते हैं कदभूरी भाग्यमी हम जन्म की वहां पर अटव्या में अटव्या मैंने वृंदावन वृंदावन में, और यदि नहीं संभव है हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं तो गोकुले भी कतम मांगरी रजो अभिषेक कतम मांगरी कोई भी एक गैया के चरण की धूलि से मैं अभिषेक में इसी में
किसी
कोई भी ब्रज का हो गाय हो बछड़े हो अरे वहां का कोई भी भक्त हो ब्रजवासी हो नहीं हो कोई साधक भी हो उसके चरणों की धूलि हमारे ऊपर में पड़ जाए हम जीवन से, उद्धव जी का ऐसा नहीं कहते हैं ये कटमांगरी
वृंदावने किमपि गुल्मलत
वृंदावने
किमपि
किमपि किमपि मैंने किसी भी मैं गुल्मलता इत्यादि हो जाऊं किंतु किसकी चरण धूलि चाहिए निर्दिष्ट कर दिया, जा दुस्तजन स्वजन आर्य पथं च हित्वा जिन्होंने अपने स्वजन और आर्य पथ को जलांजलि देकर दुस्तर जो छोड़ा नहीं जा सकता किसी के लिए संभव ये सब को छोड़ छाड़ करके क्या किया?
भेजो मुकुंद,
मुकुंद की चरण की
सेवा।
यही पर कुछ गड़ो, ये यदि लिख देते किंतु उनका साहस नहीं था। ये कृष्ण स्वयं जिसकी चरणों की सेवा की, मैं वैसे गोपियों की चरण की धूलि को चाहता, ये लिख न सके। लिखने की इच्छा थी, डर के माने नहीं लिख सके। नहीं तो यहाँ पर ये क्या जरूरत थी, गोपियों की चरण क्यों मांगते हैं धूलि?
मुद्रा की नागरियों ने तो, नागरिया ने तो इस तरह से कहा है कि धन्ना ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्त जाना, कि उसकी व्याख्या में कहा है कि उरुक्रम जस्य
तो उनसे श्रेष्ठ, उद्धव से श्रेष्ठ है, ब्रज के निकट हैं ये, वो सीमा पर हैं, इसलिए ऐसा उनको अनुभूति ऐसा कर सकती हैं, किंतु उद्धव जी नहीं कर सकते। ये द्वारका के सबसे परिकर हैं, इनकी कभी भावना ऐसी हो ही नहीं सकती, बहुत उन्नत भावना है। इसलिए उनको लिखा, इच्छा जयदेव जैसे वैसे ही थी इच्छा, किंतु डर के मारे उन्होंने ऐसे लिख दिया। क्या हे जो मुकुंद, अच्छा सचमुच में रास में यदि देखते हैं तो गोपियों ने कृष्ण का भजन किया या कृष्ण ने गोपियों का भजन किया? कृष्ण अपने मुख से क्या कर रहे हैं, मैं छिप करके क्या कर रहा था, मैं कहीं गया नहीं था इधर उधर, मया परोक्षम भजता, मैं तुम्हारा भजन करने के लिए और भजन करता हुआ ही मैं तुम्हारे साथ। तो कृष्ण कहते हैं अपने मुख से जब मैं गोपियों का भजन कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये उद्धव जी कह रहे हैं के ये मुकुंद कभी भी गोपियों ने जिस मुकुंद की सेवा की, इसलिए ये करने में समर्थ हैं। कृष्ण जो कह रहे हैं वही बात ठीक है, मैं पास में ही छिपा हुआ और तुम्हारा भजन कर रहा था, और भजन ये कर रहा था कि कहीं तुम हमको भूल न जाओ, ये मैं देख रहा था, इसलिए मैं छिप छिप करके तुम्हारी बातों का, वो वाणी रूपी अमृत का, मैं सुधा का पान कर रहा था, मैं उसका आस्वादन कर रहा था। इसलिए फिर यहाँ पर भजन करने का वो तात्पर्य कृष्ण ही, किंतु इनकी ऐश्वर्य बुद्धि होने से ये ऐसा कर रहे हैं जो गोपियों ने पहले। इसलिए ऐसे जिनके चरणों की भजन इन लोगों ने किया, उससे श्रेष्ठ और कोई चीज नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं। इसलिए ऐसे गोपियों की चरण धूलि के लिए पाने के लिए मैं गुणलता औषधि को जाना चाहता हूं। और उसमें भी ये कहा, इसको कह करके उनकी अंतिम लालसा यही हुई, बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम
पादरी,
उन गोपियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके एक की एक धूलि का नाम की मैं वंदना करता हूं, जिसके लिए श्रुतियां आज तक खोज करके भी नहीं पाई। मतलब क्या है, श्रुतियों में ऐसे प्रेम की बात नहीं लिखी गई, ये इसका सीधा मतलब। वेदों में कहीं भी उपनिषदों में ऐसा नहीं कहा गया कि कृष्ण ने किसी भक्त की स्वयं चरणों की सेवा की है, ये सब प्रेम की बातें उसमें है। इसलिए श्रीमद् भागवत ही वेद रूपी परू का ये प्रपक्त फल है जिसमें इसको बता दिया। इसलिए इससे बढ़कर के और कोई शास्त्र नहीं है, गोकुल जैसे कोई। अनाधिकारी और उस समय में सतयुग इत्यादि, उसमें बहुत से लोग उसी तरह थे, ऐसा प्रेम का विकास नहीं हुआ, राम का भी रूप नहीं आया, इसलिए लोग वैसे ही भावना संपन्न। राम के बाद में कुछ भक्ति आई, वो भी ऐश्वर्य मिश्र भक्ति आई, इसके बाद में कुछ और आगे लोग बढ़े, व्यास जी प्रकट हुए, सुखदेव गुरु स्वामी हुए, धीरे धीरे लोगों का अधिकार बढ़ता गया।
तब कलयुग के लोगों का अधिक विकास माना जाता
है, कहते हैं कलयुग के लोगों का चैतन्य महाप्रभु को जो विद्या में आए, वही लोग राधा कृष्ण के इस प्रेम को समझेंगे, दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता, उनको समझाने के लिए भी आए, जो राधा कृष्ण का वो प्रेम था वो क्या। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जब इस सचमुच में भजन करके उन चीजों को,
स्पेशल कलयुग, सब कलयुग तो ऐसा नहीं,
विशेष करके हम लोगों का ये सौभाग्य है आज से 500 वर्ष पहले लीला गई है। चंपन में जहाँ लीला चल रही होगी ना उसमें व्यवस्था करें, और उसके बाद में तीसरा जो जन्म होगा हो सकता है जो एकदम महाप्रभु की लीला अब अप्रकट होने जा रही है शिवास जैसा, और उसके बाद ही में होगा महाप्रभु की लीला चल रही होगी और उसमें आप लोग प्रवेश कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और जब उसकी सिद्धि हो जाएगी तब युक्त लीला के लिए प्रस्तुत रहें। कल से आप लोग